भव समूह को नाश करने वाले साक्षात हरि कृष्ण प्रणय पास में आबद्ध होकर के जिनके हृदय में निरंतर वास करते हैं। यहां पर कहते हैं कि इसलिए धातु का यहां पर बतला रहे हैं अघासुर का जो अघ का जो वेग है अघ का वेग मनोवेग है ना मनोगो क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर वेग उपस्थ वेग इसी से पाप इत्यादि होते हैं। तो अघ का जो वेग है पाप करने का जो वेग है कैसे उन्होंने दूर किया अघासुर को मुक्ति दे दी फिर उसका पाप रुक गया कि नहीं करना कैसे रोका उसके अघ को वो करता रहता पाप किंतु उसके शरीर का ही विनाश कर दिया अब उसकी आत्मा रही आत्मा को क्या कर दिया मोक्ष कर दिया। जब उसकी आत्मा का मोक्ष हो गया तो फिर इस जगत में पाप करने के लिए आएगा नहीं ऐसे दयालु हैं। एक आदमी मान ले कि यहां पर कोई पाप कर रहा है हमने उसको खूब ऊंची कोई वस्तु दे दी और उसे अलग हटा दिया उसी तरह से ये मुक्ति दे करके फिर जगत में आना ही नहीं होगा शरीर नहीं रहेगा पापी नहीं रहेगा ऐसे ये दयालु हैं। हम बच्चे को मारेंगे वो रोएगा कुछ कष्ट भी हो किंतु मैया किस लिए मारती है ऊपर से मालूम है मैया मारती है किंतु वो दया के वजह से ऐसा है यदि सच्ची सच्ची मैया है तो कृष्ण उसे कोटि गुण दयालु हैं। इसलिए वृंदावन बिहारी का यह ऐसा प्रताप है वृंदावन में ही अघासुर को मारा। इसलिए जिनका चरित्र परम मनोहर है ऐसे श्रीहरि उसके हृदय से कभी भी बाहर नहीं जाते एक क्षण के लिए भी नहीं जाते ये लोग महत्पुरुष हैं। भगवत सब भवती भागवत प्रधान देखो कितना सुंदर बारी के एक अर्थ इसमें से निकालते हैं सब भवती भागवत प्रधान वह भागवत प्रधान होता है। यहां पर स है एक वचन एक वचन का प्रयोग क्यों किया जगत भर में बिरला ही कोई एक ही व्यक्ति ऐसा भागवत प्रधान होगा सभी नहीं होंगे दुर्लभता को दिखलाने के लिए घाटे माठे बाटे घाट में इधर में बगीचे में इधर वो फलते फूलते नहीं है वो नहीं होते हैं वो उनकी कृषि नहीं होती अधिकता से नहीं पाए जाते एक बिरल यदि विश्व में हो कोटि स्वभी महामुने और ऐसा जैसा बतलाया ये तो कोटि कोटि लोगों में से कोटि कोटि में से एक होगा केवल ऐसा वैष्णव। यहां पर यही कह रहे हैं इसका तात्पर्य तादृश भगवत भागवत प्रधान है बाहुल्य होते पारे ना वो लोग जगत में अधिक नहीं होते कोई बिरले और कली काल में बहुत असंभव बहुत दुर्लभ करोड़ों में से वो चैतन्य महाप्रभु आए थे इस जगत में इसलिए उनका भी छींटा जो कुछ है जगत में कुछ अभी है इसलिए कहीं कहीं पर हो सकते हैं अन्यथा दूसरे कलयुग में होना असंभव बहुत असंभव। कहते हैं ऐसे सब गुणों से युक्त जो बतलाया गुण जगत में कली काल में यह परम दुर्लभ है भाई बहुत दुर्लभ। ये जो बतलाया जिन लक्षणों से युक्त ये लोग भागवत प्रधान है और महाप्रभु के परिकर जो आए राय रामानंद स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये कैसे हैं ये जो लक्षण है परिपूर्णतम मात्रा में उनमें है जो कि इनमें भी नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा देने वाले हैं कौन राय रामानंद जो चैतन्य महाप्रभु को प्रबोध देने वाले हैं सांत्वना देने वाले हैं वो कौन है जो कि महाप्रभु के हृदय को निकाल करके अक्षर के रूप में परिणत कर सकते हैं ये एक रूप गोस्वामी प्रभु सनातन गोस्वामी ये इन लोगों से बहुत ऊपर है। ऐसा तो जगत में तो भगवान के परिकर थे इसलिए कलिकाल में ऐसा बड़ा भारी कठिन है जैसे समस्त वनों में सिंह नहीं पाए जाते वृंदावन में अटल्ला वन है ना, और सेवा कुंज वन है, निधुवन है ना, और इधर मधुवन, ताल वन, कुमुद वन, भांडीर वन, ये कितने वन है? इन वनों में सिंह पाए जाएंगे कि नहीं? बड़े बड़े वनों में भी सिंह नहीं पाए जाते, बहुत दुर्लभ है। कल यदि हिमालय के कंदराओं में या मध्य प्रदेश के बिहड़ जंगलों में, जबकि हम पूरी से और आते हैं यहाँ, या सुंदरबन में कहीं बिरले जंगल, तब कहीं कहीं बाघ भी मिल जाएंगे बहुत, किंतु सिंहों का मिलना बड़ा भारी कठिन है। तो उससे भी अधिक दुर्लभ ये भक्त लोग हैं। ऐसा है, यदि ये मिल भी जाए तो हम लोग उनको समझेंगे नहीं। कौन समझेगा उनको? अरे हीरा को कौन पहचानेगा? जौहरी। इसलिए ऐसे वैष्णव को पहचानने वाले भी वैसे होने चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां खं भंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एकादश स्कंद में कहते हैं, कौन कर रहे हैं? नारद और वसुदेव जी के पहले ही में भी नव योग संवाद के प्रारंभ हमें ये बतला रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, इस जगत में मनुष्य का शरीर मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। हम लोग मनुष्य जन्म में लाभ हमारा हो भी गया, सहज किसी कारण से हो गया मनुष्य जन्म, किंतु उसमें तत्रापि दुर्लभम मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ को नहीं कहा, वैकुंठ माने भगवान, और वैकुंठ प्रिय माने भगवान के जो प्रिय हैं। भगवान का मिलना खूब सहज है, यदि संत लोग मिल गए ऐसे। कब तक भगवान का मिलना दुर्लभ है? जब तक ही संत नहीं मिलते, और जहां संत मिल गए तो समझो चुटकी बजाते ही भगवान अब मिल जाएंगे, अब बहुत जल्दी। वो लोग भागवत प्रधान है, ऐसे संतों का मिलना, तो ऐसे संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये कौन कह रहा है? उसी में शायद सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं। मनुष्य का जन्म क्षण भंगुर है, एक तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ, मान ले कि हो भी गया स्त्री या पुरुष का, इतने भोगों की प्रचुरता, इतने संसार में कष्ट हैं, जो भगवान की तरफ में मुड़ना बड़ा भारी कठिन है। यदि थोड़े से भी मुड़ भी गए तो मनुष्य जन्म का कोई ठीक नहीं, अभी है क्षण भंगुर, अभी कल मर जाएंगे कि कब क्या होगा, कोई ठीक नहीं। और उसमें भी वैकुंठ प्रिय भगवत भक्तों का दर्शन, वैकुंठ माने भगवत प्रिय वैष्णवों का दर्शन करना। भगवान के प्रिय भक्त हैं कौन? ये ध्रुव जी भगवान के प्रिय हैं कि नहीं? मैं तो दर्शन क्यों देते, प्रिय हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जी उसे बहुत प्रिय, प्रहलाद महाराज जी बहुत प्रिय हैं, किंतु हनुमान जैसा प्रिय होंगे? हनुमान जैसा प्रिय नहीं, उन्होंने सर्वस्व उनकी सेवा में लगा दिया है। हनुमान बहुत प्रिय हैं, किंतु अर्जुन जैसे प्रिय होंगे? उनका एक पलंग पर सोते हैं लेकर, जिनकी रानियां अर्जुन की सेवा करती हैं और अर्जुन की पत्नियां कृष्ण की सेवा करती हैं। ये अर्जुन इतने बड़े प्रिय हैं, किंतु उद्धव जी जैसे प्रिय हैं? उद्धव जी जैसे प्रिय, उद्धव जी बहुत प्रिय हैं, उनके समान और कृष्ण का कोई प्रिय, लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है। आंख बंद करके सुनो तो जल्दी समझ में आएगा। तो वो प्रिय हैं, किंतु गोपियों में ये सबसे छोटी हैं, सबसे छोटी जो गोपी है। उद्धव जी उतने प्यारे हैं, उद्धव जी कहते हैं मैं जो सबसे छोटी है उसी गोपी की चरण की धूली मैं चाहता हूं, वैसा भी मैं हो जाता। तो सबसे कृष्ण का प्रिय कौन हुआ? गोपियां। और गोपियों में सबसे अधिक अष्ट सखियां और भी सखियां हैं, और उन लोगों में भी सबसे अधिक कौन प्रिय है? श्रीमती जी। ये प्रियता की एकदम सीमा है, उसे और उनका कोई प्रिय। उस राधा जी की जो सेवा करेगा या करेगी, वो कृष्ण का सबसे भी उससे भी अधिक प्यारा। ऐसे महापुरुष लोग जो उन लोगों की सेवा की अभिलाषा के वे साधन भजन करते हैं, ऐसे महापुरुष लोग भगवत प्रधान हैं। श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी क्रमशः ऐसे ये सब दिए गए हैं उदाहरण। एक घंटा हो गया ना, साढ़े छ साढ़े पांच किया था, साढ़े छ हो गया ना। फिर कहते हैं कैसे होगा, कैसे होगा ऐसा भाव। ऐसे जो भगवत प्रधान हैं, इन लोगों के दर्शन कैसे होंगे, कैसे होगा? जब तक प्रचुर सुकृति, सुकृति क्या उससे भी ऊपर की चीज नहीं होगी तो इनका दर्शन भी संभव नहीं है। कहते हैं ये दान से, व्रत से, तपस्या, होम, जप, वेद अध्ययन, संयम और अन्य विविध मांगलिक अनुष्ठान के द्वारा कृष्ण की भक्ति हो सकती है। किंतु ऐसे महापुरुषों का दर्शन होना बड़ा भारी कठिन। भक्ति हो सकती है, जो यहां पर कहा गया इसे तो एकदम नहीं होगा। दान व्रत से नहीं होगा। व्रत की भक्ति कैसे मिलती है, महाप्रभु जी ने क्या बतलाया है? बतलाया है गोपी भाव बिना, बतलाया ना क्या है, आर कोई व्रज के भाव को नहीं पा सकता। और उसको हम वेद दान व्रत तपस्या होम वेद अध्ययन इत्यादि से हो जाएगा, कदे नहीं ऐसा नहीं होगा, तब हो सकता है। दान माने यहाँ पर यह समझो जो ऐसे वैष्णव की सेवा या कृष्ण के लिए सर्वस्व देने की भावना। व्रत माने एकादशी व्रत शुद्ध रूप में, ये मायावादी अद्वैतवादी कर्मी ज्ञानी योगी तपस्या जैसा नहीं, एकादशी तो सभी करते हैं किंतु शुद्ध भक्ति वाले जिस प्रकार से एकादशी करते हैं, कैसे? नंद बाबा के अनुगत में गोपियां जो जसोदा इत्यादि जिस प्रकार से करती थी उस रूप में हम लोग करें, तब तो हो सकता है। तपस्या, तपस्या माने क्या? आराधना, यहां लो तपस्या। आराधना माने उसमें जो जसोदा जी को कृष्ण के बांधने में जो परिश्रम हुआ, ऐसे कृष्ण को पाने के लिए जैसे सनातन गोस्वामी इत्यादि संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला अवसान कृत निद्राहार विहार कादित चातंत दीनौ जो राधा कृष्ण गुणस्पते मधुरी मानदेन सम्मोहित वंदे रूप सनातन रूप। ये सब आराधना। होम, होम माने क्या? जो गोपाल मंत्र है ना उसमें अंत में क्या है, ये होम। गोपाल मंत्र से कृष्ण के प्रति संबंध रखते हुए क्या हमको किस चीज की जरूरत है, वही भाव हृदय में लेकर के उसी भाव से हम स्वाहा करते हैं। किसमें, किसमें? कृष्ण की आराधना मानने की आग है, उस आराधना में इस भावना को मैं स्वाहा कर रहा हूं, ये हूं। जप, जप मैंने क्या? अगदमन जसो न अघरिपुरपि यत्नात् अत्र दिव्या प्रसादा प्रसरपिट पटाक्षि प्राप्ति काम प्रकामम अंसर दिजद उच्च स्नान सेवा अनुबंध तदपि सुरभिराधा कुंडम में वास्तयो में। ऐसी आराधना उनकी होनी चाहिए। जप, ये कृष्ण क्या करते हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, राधे राधे तो कैसा जप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जप करें। अभी हम लोग मंत्र जप करते हैं, देखो कैसा जप करते हैं, ये प्रजापति महाराज जी आ गए, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, देख रहे हैं कौन आ गया, देख रहे हैं कि क्या हो गया, देखते हैं कि अभी तो बहुत अभी भूख लग गई है, क्या करूं, इधर संसार की वो चीज याद आ रही है, वो चीज याद है, सब चीजों की याद आ रही है, और बैठे हैं मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र से कोई संबंध ही नहीं है, उसमें क्या ध्यान है, कैसी परिपाटी होनी चाहिए, चित्त उसमें डूब जाए ऐसा नहीं, या अत्यंत अनुरक्त होकर के उनसे प्रार्थना इत्यादि करें, हमारे हृदय में पूरी हो। हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, हमारे हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए, ये सब भावना प्रार्थना रहती है एकांत चित्त से। जब मंत्र जब करें ना तब उसमें डूब जाए, इधर उधर की कहीं चिंता न आए। हमारा क्या हो, या तो सो जाएंगे यदि मन को खाली करेंगे, और नहीं तो इधर उधर की बात आए। ये सब मंत्र जप का तरीका नहीं। इसलिए इन चीजों को उस में संयम, कृष्ण भक्ति करते समय में यदि कुछ ऐसी बात हो गई तो संयम उनमें हो, ऐसा होने से कृष्ण के प्रति भक्ति होती है। योग वासिष्ठ में भी ऐसा लिखा, श्रेयो भी विविधैश्च अन्यै कृष्णे भक्ति ही साध्यते। ये नहीं, जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। करें जन्मांतर सहस्त्रेषु, हजारों हजारों जन्मों में तप ज्ञान समाधि इत्यादि के द्वारा जब चित्त का, जीवों का चित्त निर्मल हो जाता है और पाप उसके क्षीण हो जाते हैं, तब कृष्ण की भक्ति हो सकती है, प्रयोजित उसमें होती है। सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में बतला रहे हैं। इस प्रमाण के द्वारा ऐसा समझा जाए, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो बड़े भारी पापी हैं। क्या कहा, इसलिए तो नहीं आ रहा, पाप अभी क्षीण नहीं हुआ। अब कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहेंगे ये हमको भक्ति हो गई है।
और एक श्लोक में भी है, यावत् पापेषु मलिनं हृदयः तावत् एव हि न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरुः।
एक ही बात ऐसा है। तो जति सनातन गोस्वामी क्या, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कोटि कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पते प्रेमधन, तबे तहां जानो तहां थे अपराधेर प्रचुर कृष्ण भक्त ना करे अंग। तो क्या समझना चाहिए, पाप बल्कि हल्का है, अपराध और भारी गंभीर है, तो समझो जब ही अपराध है इसलिए भक्ति नहीं हो रही, इसीलिए नैनंगर सुधारे या इत्यादि नहीं होती, भक्ति रहती तो होती। इसे अभी हम लोगों में जो अंदर में है अभी भक्ति नहीं, भक्ति का आभास है, जिसमें भक्ति होती हृदय द्रवित हो जाता, चित्त विकल हो जाता कृष्ण के मारे, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगती, उसमें अपना होश नहीं होता, इसलिए हम समझते हैं कि भक्ति नहीं। ये बात ठीक है ना, तो इसलिए समझना चाहिए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी एक प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए, मोसम हमारा जीवन सदा पापे रस ना ही कपुण्य रले। और भी जगह वो है गोपीनाथ मम निवेदन, उसमें भी कहते हैं सादे सदा पापे, किसलिए कहते हैं, हम लोगों के जो आचार्यों ने ऐसा लिखा है हम लोगों को अनुभव करके लिखा है। इसलिए आत्म तत्व ज्ञान जिनको हो गया है वो ज्ञान ही भक्ति है, नहीं आत्मा का ज्ञान होने से, परमात्मा का ज्ञान होने से भक्ति नहीं हो गई, उसके अंग है ये सब, उसके द्वारा होने से ही भक्ति हो जाएगी, नहीं जिनको खूब ज्ञान हो गया कहते हैं नहीं इसको ऐसा नहीं कर सकते, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। न च आत्मज्ञान परानं ज्ञानमेव भक्ति इति न, केवल आत्मा का ज्ञान हो गया बस भक्ति हो गई नहीं होगा, इससे परमात्मा का ज्ञान होगा वो भी भक्ति नहीं, भक्ति तो चित्त को एकदम द्रवित कर देती है। जो वासिष्ठ इत्यादि के इन वचनों के द्वारा ऐसा व्यक्त होता है, तप ज्ञान समाधि ये भक्ति के अभी साधन हैं, यदि वो भी वैष्णव के अनुगत में किया जाए तो, नहीं तो साधन नहीं है, और भगवान गीता भगवत गीता का भी तात्पर्य सिद्ध स्वामी ने इसको इस प्रकार से दिया है। अवान्तर व्यापार है, ज्ञान क्या है, भक्ति का
अवान्तर,
अवान्तर माने
बाह्य
अवान्तर, गौण एक तरह से समझो बाहरी, उसका अंतरलक्षण नहीं है। जेहेतु इस विषय में प्रमाण दिया जा रहा है, प्रतिपूर्वक जो लोग हमारा भजन करते हैं वही केवल प्रतिमान व्यक्ति ही, प्रतिमान को ही बुद्धि योगदान देता हूं, दान करता हूं, बुद्धि ददामि बुद्ध योगन जम माम उपयान्ति, बुद्धि योग माने भक्ति योग मैं देता हूं, दूसरे ज्ञानी को और ये सबको नहीं देता। आजकल ये समझते ही नहीं ये ज्ञान में भक्ति में क्या अंतर है, साधु किसको कहते हैं ये नहीं समझ सकते, ज्ञानी लोगों को ही समझ लेना चाहिए, जो योगी कोई जो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जिनका हृदय में भगवान का चित्त रमण नहीं करता, साधारण लोग विशेष करके ऐसे ही उन लोगों को ही साधु। तेषां सतत युक्तानां भजता प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां भजतां सतत युक्तानां, सब समय अपने चित्त को हमारे में लगा करके युक्त रखते हैं, भजतां प्रतिपूर्वकं और प्रतिपूर्वक हमारा भजन करते हैं, तब मैं बुद्धि योग देता, अभी बुद्धि अभी तक नहीं दिया है, वो उसके पहले वाला भजन क्या चीज है, अभी ठीक भजन नहीं है, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। जब भगवान बुद्धि योग देते हैं इसके बाद में जब भजन करता है तब से उसकी सिद्धि होती है, तब भगवान की सेवा को प्राप्त करता है। आज यहीं तक रहे। वंशाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो कामादितरं कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याय पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जुआमि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे मां शरणं। वो माथो ब्राह्मण के ऊपर में गोप कुमार की कृपा देखकर भाव विवल हो उठे, उन्होंने क्यों ना ऐसा हो, साधु संघ की ऐसी महिमा है कि जिस पर हाथ रख दिया उसको कृष्ण प्रेम की उपलब्धि हो गई, केवल ज्ञान नहीं उपलब्धि हो गई और गोलोक वृंदावन में वो पहुंच गया। उसी से कहते हुए प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो ऐसे किंतु ऐसे जो साधु जिनकी महिमा बतलाई गई, जिनका विवश होने पर भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता और भगवान भी एक क्षण के लिए उनका हृदय नहीं छोड़ते, और भागवत प्रधान की जो व्याख्या यहाँ पर दी गई, महत्पुरुषों की जो व्याख्या दी गई, मतिर न कृष्ण प्रतो मिथो भी पद देत गृह बसाना अदांत को भी विशतांग समिश्रा पुनः पुनः चर्चित चरबना एवं विदो नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, और अंत में बतलाया महियसांग पाद रजो भी शेख, महियसांग माने यहाँ पर महत्पुरुष साधुओं में महत्व, ऐसे पुरुषों का संग होना बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए कल बतलाया एवं लक्षणा लोके दुर्लभा मानुषा, मानुषा कलौ जिस प्रकार से सब वनों में सिंह नहीं रहते, उसी प्रकार से ऐसे इस संसार रूपी वन में सर्वत्र सिंह नहीं मिलते हैं, अर्थात सर्वत्र ऐसे शुद्ध महत्पुरुष नहीं मिलते हैं, विशेष करके कलिकाल में। इसलिए वहां पर कल हमने इसकी बतलाया था, स्वभागवत प्रधान। स्वभागवत माने वो केवल भागवत प्रधान, अर्थात स्व एक वचन में कहा गया। बहुत लाखों कोटि में से एक ऐसा भक्त दुर्लभ होता है। भगवान का दुर्लभ संभव है, भगवान का दर्शन संभव है, किंतु ऐसे महापुरुष जो हैं उनका दर्शन संभव नहीं। ऐसे महापुरुषों का यदि संग मिल जाए तो समझ लो कि अब संसार हम पार हो गए, पार हो गए। इसलिए यहां पर फिर पुनः पृथु महाराज के प्रति सनत कुमार जी कह रहे हैं, जत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित उदग्रथयन्ति मूर्छन्त तद्वन् न रिक्तमतयो यतयो निरुद्ध श्रोता गण स्मरणम भज वासुदेव। जत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, यत पाद पंकजयो जिनके चरण कमलों में, जो पलाश, पलाश माने क्या, अंगुली, अंगुलियां हैं, अंगुलय, तेषां विलासः, उनका विलास माने कांति, इतनी सुंदर है उनकी कांति, इतनी सुंदर है, उसका स्मृत्या स्मरण करके अथवा विलास, अर्थात कृष्ण चंद्र के चरणों का विलास क्या है, वृंदावन में विलास, सखाओं के साथ में विलास करते हैं वृंदावन में, सखियों के साथ में विलास करते हैं गोवर्धन इत्यादि की कुंजों में, रात इत्यादि उनके चरणों का विलास है, उनका स्मरण करके जो लोग कृष्ण के ऐसी लीलाओं का स्मरण करते हैं, पहले बतलाया उनके चरण कमलों की कांति को हृदय में धारण कर, फिर विलास शब्द का अर्थ किया चरणों का विलास, वृंदावन में उनके चरण सखाओं के साथ में वन में भ्रमण करते हैं, सखियों के साथ में विचरण करते हैं, और वृंदावन में रास इत्यादि के द्वारा गोपियों का मन मुग्ध करते हैं, ये सब विलास है। उन विलासों को यदि कोई धारण करने वाले महापुरुष हैं, वो महापुरुष मिथ्या वृंदावन विलास, वृंदावन आदि विषक क्रीड़ाओं का जो स्मरण करते हैं, भक्त्या, कैसे भक्त्या, भक्ति क्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, उसी का श्रवण करते हैं, लीलाओं का, लीलाओं का स्मरण करते हैं सब। कौन सी लीला का, संध्या हो गई, पूरब दिशा में चंद्र उदित हुए, उन्हें अपने लाल लाल किरणों से अपने प्रियसी रूपी संध्या को, रात्रि को गुलाल मुख में, उसी समय कृष्ण के अंदर में कुछ लालसा पैदा हुई, उन्होंने बंसी बजाई, ये ध्यान कर रहे हैं, पहले तो उसका श्रवण किया, किससे श्रवण किया, ऐसे योग्य अधिकारी बोले, और सर्च करने के बाद में उस क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं उसका, रात पंच अध्याय इत्यादि का, उन लीलाओं का, और फिर यदि कोई नहीं है उस लीलाओं का स्मरण कर, ये हुआ भक्ति, तीन श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं अपने अपने स्थान, बिना श्रवण के कीर्तन नहीं होगा, आप बिना कीर्तन के स्मरण नहीं हो, कीर्तन प्रभावे स्मरण हो गए, कीर्तन के द्वारा ये स्मरण होगा, ये सब पद्धति है। किससे, किसे श्रवण करेगा, वो गुरु क्वालिफाइड गुरु हो उसके द्वारा सुने, हृदय में धारण करेगा कैसे, सेवा के द्वारा, उनकी सेवा करे प्रश्न के द्वारा, तो फिर क्या होगा, तद उक्तम स्वमातरम प्रति कपिल देवेन, इन तीनों के संबंध में कैसे वो भक्ति के साथ में कृष्ण के लीलाओं का, उन विलासों का जो वृंदावन में लीलाएं हुई, कैसे वशीभूत हो जाते हैं और साधारण नायिका की भांति नायिक के भांति में परस्पर व्यवहार करते हैं। यदि वो कह देती हैं हम थक गई तो क्या करते हैं, श्वेत के बुंदों को उनको पूंछ करके अपने दुपट्टे से लाल लाल अबीर रगे हुए अपने इसमें रख लिया और उन कहते आप थक गई, बड़े प्रेम से कह करके पैरों को दबाने की चेष्टा करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, कंठों को पकड़ करके और झूल जाते हैं जो कि लक्ष्मी इत्यादि के लिए संभव है, उन लीलाओं का कीर्तन स्मरण इत्यादि करते हैं। जो इसी को ये बतला रहे हैं कपिल देव जी अपनी मैया से, कपिल देव अपनी माँ से कुछ कह रहे हैं, ये तो पतले पृथ्वी महाराज सनत कुमार से अभी भी व्याख्या में ही उस सब भक्ति आए ना, भक्ति शब्द के लिए करें, भक्ति के संबंध में कैसे उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं कपिल देव जी अपनी मैया को बतला रहे हैं। वर्णन साधन वर्ग कथन सर्व साधन, सब साधनों को बतला दी मैया इस प्रकार से साधन करो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि तरह से करते 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 सर्वसारतया उन समस्त भक्तियों के जो बतलाए गए साधन 64 प्रकार की भक्ति उनमें से सार तद अंते सारवर्णन करते हुए उन सबके अंत में सारवर्णन करें वैकुंठ लीला अभिधानम इति, उस समय और अधिक नहीं बतलाए वैकुंठ लीला अभिधान अभिधानम इति, वैकुंठ माने ब्रज, ब्रज की लीला का अभिधानम इति, ब्रज लीला का स्मरण कीर्तन स्मरण करें उन्हीं लीलाओं का। जैसे कभी कभी स्वर्ग का अर्थ भी वैकुंठ हो जाता है, वैकुंठ का अर्थ भी वैसे यहाँ पर वो ग्रहण करना चाहिए। जदा विलासो नाम भवन महाप्रसाद अन्न भक्षण नित्य गीतादि भी सद्रूपाणी भक्त्या कर्माशयम छिदंती, कहते हैं और भी अथवा विलास कहने से, विलास शब्द का दो तीन अर्थ भी बतला, पहला बतलाया क्या उनके अंगों की कांति को, दूसरा उनके वृंदावन के चरणों की जो चरणों के जो विलास हैं लाखों कोटि प्रकार के हैं, कैसे लाखों कोटि प्रकार के, गोपियां उनके चरणों को कभी अपने सिर पर धारण करती हैं, कभी हृदय में धारण करती हैं और कभी कृष्ण क्या करते हैं उनके चरणों को धारण करते हैं। इस तरह से वृंदावन की विषय क्रीड़ाओं का ये बतलाया, अथवा विलास कहने से वृंदावन आदि विषय क्रीड़ा वह क्रीड़ा के श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा भक्ति प्रकाश करके साधु लोग कर्म आशय अपने कर्म के आशय को, अर्थात हृदय में जो ग्रंथि पड़ गई है भगवान के भूलने से, जीव के अंदर में एक माया की ग्रंथि पड़ गई है अपने आप उसको खोलने की चेष्टा करो तो और उलझती हुई चली जाती है, वो खुलेगी नहीं। तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा है, मुझको अधिक उलझ जाती है वो खुलेगी नहीं, दलदल में समा जाने से अपने प्रयास करने से आदमी दलदल में और धस जाता है, यदि दूसरा आदमी बाहर से खींच ले किसी प्रकार से तो वो बच सकता है। ऐसे ही कर्माशय, कर्माशय मैंने कहा जीवात्मा का भगवान को भूलकर अपने कर्मों के वजह से शरीर में जो आसक्ति हो गई है ये कर्माशय है, बंधन है, ये बंधन खुलता नहीं। अभी हम नाम पूछेंगे जगत संबंधी नाम बतलाएंगे और कुछ बतलाएंगे वही सब भाव आएगा। मैं इनको पूछे कहाँ रहते हैं तो बंगाल में, मैं बंगाली हूँ, उनको पूछेंगे जो कहाँ रहती है तो कहेंगे पंजाबी हूँ, ये हमारे से पूछी पूछेंगे तो कहेंगे हम मथुरा में, मथुरा में रहते हैं, ये तुम कहो मैं लड़का हूँ मैं पुरुष हूँ, ये कहेंगे हम स्त्री हैं, ये सब कर्माशय हैं। अभी हजार तुम चेष्टा करो, ये कर्म का आशय जो है, आशय माने हृदय, इसका जो बंधन है शरीर के साथ में गठजोड़ है, आसक्ति विषयों से हमारे हृदय की आसक्ति, ये कर्म की गांठ है। तो ये इस ग्रंथि को छेदन कर सकते हैं और किसी तरह से नहीं होगा। छेदन कौन करता है? साधु लोग। ऐसे साधुओं का संग यदि कोई न करे तो वो कोटि कोटि जन्मों में वो नहीं होगा दूर। जितना भी वो दिखलाता है कि मैं भक्त हूं, भक्ति का कुछ मूल्य ही नहीं है बिना साधुओं के संग और उनकी सेवा के। उसको छिपा करके रखते हैं, वंचना करने में बड़े चतुर होते हैं। हम उनको वंचना करते हैं और भक्त और भगवान क्या करता है, उनको भी वंचना कर देता है। इसलिए अपने वचन रूपी कुठार से, तलवार की पैनी धार से काट, उक्ति के द्वारा। किंतु जो जति लोग हैं वो नहीं कर सकते। यहां पर जति किसको कहा गया? जो अद्वैत बात को आश्रय करके सोहम तत्त्वमसि कहने वाले जो जति लोग हैं, जो एक दंड और लाल गेरुआ कपड़ा लेकर सोहम सोहम करने वाले हैं, ऐसे लोग कोटि जन्मों में कोटि साधन करके भी नहीं पा सकते। जति लोग, कपिल देव अपने माता को इसी चीज को बतला रहे हैं। सब साधन वर्ग का जो सार साधन है वैकुंठ लीलाभिधान, इस लीला अभिधान के, लीला अभिधान माने व्याख्या, इस लीला की व्याख्या, इस लीला का कीर्तन, इस लीला का चिंतन स्मरण यदि करता रहे। हम लोग अभी नहीं समझते हैं, अभी साधुओं के आश्रम में है, आश्रय में खाने पीने पहनने कोई तरह की चिंता नहीं। जब बाहर में जब अकेले रहेंगे ना, इतने कष्ट, इतने दायित्व, इतने सब चीजें आएंगी, या रक्षा भी नहीं कर सकता, दिन रात उसी की चिंता करेगा। लीला विधान बतलाया गया, चित्त का भगवान की लीलाओं से संजोग, अर्थ नहीं है, ये संजोग ही नहीं है। लीला ध्यान का अनुसंगिक फल है, मुख्य फल भगवान में प्रीति, उस ध्यान से भगवान की प्रीति हो, उस ध्यान में भगवान की सेवा करे, उनके परिकरों की सेवा करे, ये उसका मुख्य फल है। केवल ध्यान लगा दिया बस ऐसे नहीं। यहां विलास कहने से ऐसा भी सब समझो, भगवान का महाप्रसाद अन्य इत्यादि, उनके चरणों में दिगही तुलसी को सूंघना, उनकी निर्माल्य को प्रीतिपूर्वक धारण करना। अभी ठाकुर जी का माला ले आएगा ना, तो कोई किसी को देगा ना, तो वो लड़ाई, एक तो पहले युद्ध करेगा, हाँ। वो ऐसा रुकेगा, वो देना चाहेगा वो लेगा ही नहीं। ये नहीं समझा जाए आज भगवान की अद्भुत कृपा हुई, ये ठाकुर जी की प्रसादा मिली, ऐसा नहीं। भक्त आदर्श से युद्ध करेगा, युद्ध करेगा, ऐसा नहीं। खूब श्रद्धा के साथ प्रीति पूर्वक इनको ग्रहण करें। भगवान का स्वरूप जान करके महाप्रसाद को प्रसाद पाते हैं, एकदम क्या होता है, दौड़ करके भक्षण करने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा नहीं। लूटने के लिए, माल लूट रहे हैं, मैं दूसरा ले लगा, ऐसा नहीं। बड़ी प्रीति के साथ में भगवत स्वरूप जान करके उनकी सेवा करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि ऐसी वृत्ति रहेगी तो उसका फल होगा, और ऐसी वृत्ति नहीं होगी जैसे हो जाए, इसका टेस्ट करेंगे कि महाप्रसाद कैसा है, अच्छा लगता है, भगवत स्वरूप का ज्ञान न रहे, प्रार्थना मूलक न रहे, तो उसका फल उल्टा हो जाएगा, मोटा छोटा होकर के काम की उद्दीपना होगी। शरीर पुष्ट होने पर काम होगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा बदमाशी इसमें रुचि जाएगी, उसी महाप्रसाद के सामने, भगवान के सामने नित्य गीत इत्यादि रूप जो भक्ति, ये विलास है। उसी के द्वारा जिस प्रकार से कर्माशय अहंकार हृदय की ग्रंथि वो छेदन कर लेते हैं, जति लोग भी सन्यासी लोग भी नहीं कर पाते। स्रोतस्तमरणम स्रोतो गणास्तमरणम, स्रोत माने जिस प्रकार से बाढ़ में अभी यमुना की बाढ़ आई और उसका स्रोत चल रहा और उसमें यदि बड़े बड़े खिलाड़ी लोग भी अभी मथुरा में जरा अपना कौशल दिखलाने के लिए कूद पड़े तीन आदमी, एक को तो बड़ी मुश्किल से पुल पर बचा लिया गया और बाकी सब न जाने कहाँ बह करके मर गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। उसको रोकने के लिए अभी जो बाढ़ आई उसको रोकने के लिए यदि गवर्नमेंट लाख प्रयत्न करे रोक सकेगी? रोकेगी तो क्या होगा, जहां तक बांध बांधा उसको उछल करके जाकर के तोड़ मोड़ करके कहां फिर चली आएगी? उससे भी अधिक वेग है इंद्रियों का विषयों के तरफ में, उसको रोकने की चेष्टा करो तो और बढ़ जाती है, उफन जाती है, वो काम को रोक नहीं सकते। एक क्रोध साधन से है उसी को हम रोक नहीं सकते। तो काम का वेग जिसको शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, विश्वामित्र इत्यादि नहीं रोक सके। क्यों रोक सके? कौन लोग दिखला रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी अत्यंत शरणागत भक्ति के बल पर। इसलिए इंद्रियों का को निरुद्ध करना, उनकी गति को रोक देना, ये इन लोगों के लिए जतियों के लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति भक्ति के बल पर भगवान के चरणों कमल को अपने हृदय में धारण कर उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करके सहज रूप में चुटकी बजाते ही पार हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, जति लोग उस बंधन को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। कभी कभी ऐसा था जनेऊ में कभी कभी गांठ पड़ जाती है या चोटी में गांठ पड़ गई, थोड़ा 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 शिथिल हुआ और फिर थोड़ा सा खींच दिया, ऐसा पक्का हो गया कि जब तक के केस नहीं काटे जाए, चोटी नहीं काटी जाएगी थोड़ी, तब तक वो खुलता ही नहीं। और कंघी से खींच करके निकालो तो उसमें सारे केस आ जाते हैं, जबरदस्ती करेगा ऐसे कुछ शिथिल हो जाता है किंतु फिर खड़ा हो जाता है। अथवा फिर अर्थ करते हैं, अथवा साधु लोग ऐसे महत्पुरुष लोग हैं वो तो इसका सम्यक छेदन कर दे, काट देते हैं। और जति लोग काट नहीं पाते, थोड़ा सा ऐसा ढीला किया और फिर उसे भी और उसमें फंस गए। शंकराचार्य कहीं जा रहे थे, प्यास लगी, पानी पीने के लिए कुएं पर गए, कोई कचोरी पानी भर रही थी तो वो पानी मांगा तो वो पानी पिलाने लगी, तो वो किशोरी इनके तरफ में देखने लगी। 12 वर्ष की उम्र में ही 8 वर्ष की उम्र में सन्यास ले लिया था, अभी किशोर, अभी 12-13 वर्ष के बच्चे, बड़े सुंदर सुकांत, दिव्य चेहरा, उनके तरफ में वो देखती रह गई। तो उन्होंने पूछा क्या देख रही है, तो देख रही है, वो झट उतर दिया, किसी वैष्णव घर की लड़की थी, कहिए हमारा नौकर तुम्हारी जैसा था वो आज भग गया, मैं देख रहा वही हमारा नौकर तो नहीं है। तो शंकर जी लज्जित हो गए, जिसमें भक्ति है वो इसको धारा को रोक सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दूसरे इसको नहीं रोक सकते। किस पर? भगवत भक्ति के बल पर, अन्यथा नहीं। क्यों? कृष्ण का सौंदर्य इतना है, गोपियों का सौंदर्य इतना है, भक्ति इतनी निराली और रसपूर्ण है जो संसार की सभी चीजें बेकार की लगती है। तद्वत शब्द यहां पर है, तद्वत निरुद्ध निरुद्ध स्रोतो गणा गणा तमरणम इव इव शब्द है कहीं, और तद्वत नरिक्तमतयो तद्वत, जिस प्रकार से भक्तों कर लेते हैं उस प्रकार से रिक्तमति वाले, रिक्त माने शून्य, ब्रह्मा शून्य है, निर्विकारणी शक्ति अनादि अव्यय इत्यादि है, उसमें कोई चीज नहीं, वो शून्य है, शून्य से जगत पैदा हुआ, शून्य में फिर मिट जाएगा। यही बुद्ध देव की थ्योरी है और इसी को प्रचंड रूप में ग्रहण करते हैं शंकराचार्य, इसलिए वो भी ऐसे हैं। इसलिए उनके विचार में भक्ति नहीं है, भगवान भी नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म है। लोगों को छल करने के लिए छल करके कपटता से कहते हैं यह भगवान का भजन करो, असल में भगवान का भजन उस संप्रदाय में है ही नहीं है,